ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய
22
நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் தத்தோ ஜயே மௌதீரயே நஷ்ட ப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத் சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நஷ்ட கிம். ஓம் அஜ்ஞானதி மிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்சன ஶலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண ப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேசதாரிணே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. तो आप सभी वैष्णव वैष्णवी श्री चरणों में सादर वंदन. बड़ा ही पावन पवित्र तिथि श्री वामन देव का आविर्भाव आप सभी जानते हैं और भगवान का या उनके भक्तों का जन्मोत्सव परिपूर्ण होता है उनकी महिमा से, उनकी कथा से. श्रुति भगवती कहती है, यस्य प्रतिमा नास्ति स्व महिमने प्रतिष्ठितः. भगवान अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है. और कोई भी उत्सव हो मंदिर में, बिना भगवत कथा के मरा हुआ है. तो उत्सव का प्राण कथा है. हम वैष्णवों का दो ही काम होना चाहिए, एक भगवत अर्चा और दूसरी भगवत चर्चा. तो आइए भगवत चर्चा में हमारे मन वाणी हृदय आत्मा को प्रवेश कराए शुक मुखात अमृत श्लोकों के साथ. या तो श्लोक में रहिए या तो फिर शोक में रहिए. तो भक्तों को शोक से मुक्त होना है तो श्लोक में रहना चाहिए. और ये श्लोक सामान्य नहीं है, साक्षात भगवत विग्रह है. अखिलेश्वर का अक्षर ब्रह्म अवतार श्रीमद् भागवत के श्लोकों में शक्ति भक्ति प्रेम रस कूट कूट के भरा गया है. और अगर हम इसका आश्रय ले तो हम भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो सकते हैं। तो 9 अध्यायों में वामन देव का पावन चरित्र गंगा तट पर व्यास नंदन सुखदेव जी ने परीक्षित के कर्ण रंध्र में हृदयस्थ कराया है। अब कौन सा श्लोक आश्रय ले, तो हमने सोचा कि भाई बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य है और 22वें अध्याय का नाम ही श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया है कि बलि महाराज का आत्मसमर्पण, और हमें भी वृंदावन धाम में यहीं तक पहुंचना है। भगवान के और उनकी प्रिया वृषभानुनंदिनी, उनके प्रेमी सहचरी वैष्णव चरणों में क्या करना है, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन करना। तो फिर उस बलि महाराज के श्रीमुख से निकले हुए एक श्लोक का हमने आश्रय लेने का विचार किया। भागवतम श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 22 श्लोक संख्या 2 श्री बलि उवाच यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम् व्यचो वलीकं सुरवार्यमन्यते करोम्युतं तन्न भवेन् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुशीर्ष्णि मे निजम्। यही है संकीर्तन। भगवान के नाम रूप लीला धाम का उच्च स्वर में हृदय आनंद के साथ संकीर्तन करना, भक्ति संदर्भ में संकीर्तन की यही व्याख्या जीव गोस्वामी ने दी है जिसका आज आविर्भाव है। और साथ में बोलने का सबसे बड़ा लाभ है कि कौन कितना गलत बोला पता ही नहीं चले, है ना। साथ में बोलने में आनंद बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ता है, क्योंकि गलती का आरोप नहीं होगा। और दूसरा लाभ यह है कि हो सकता है कि हमारी वाणी में भाषा व्याकरण व्यवस्थित हो लेकिन भाव की कमी हो, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए में किसी एकाध दो भक्त के भाव के साथ हमारा शब्द मिल जाए तो उन पर भगवान की अनुग्रह दृष्टि के कारण हम पर भी हो जाए, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं ना, भाव ग्राही जनार्दन, भाषा ग्राही तो है नहीं। तो किसी एक दो भक्त का भाव होगा अच्छा और उनका भगवान सुनते हैं तो साथ में हमारा भी, दूल्हे के साथ में रहते हैं तो कैमरा का खर्चा हमने नहीं किया फिर भी हमारा फोटो आता है ना, बिल तो वही देगा लेकिन अपना फ्री में फोटो आता है। ऐसे ही प्रेमी भक्तों के संग में हमें भी लाभ होता है, तो साथ में गाने में सुख है। और तीसरी बात यह कि साथ में सभी लोग बोले तो किसी भी व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है, वो है ना, वो देखता है कि भाई क्या है सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए तो ये सब लोग जुलूस निकालते कि साथ में जाओ ताकि वो नेता सुने। तो बहुत सारे लाभ है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने प्रेम से इसका उच्चारण किया। बलि महाराज के ये सुंदर भाव है, पदानि शिष्णि, आपका ये तृतीय पद जो है आप मेरे सर पर रख दीजिए। ब्रह्मार दुर्लभ चरण रेणु, जो शिवानंद सेन ने कहा नित्यानंद प्रभु जी से, वही चरण आप हमारे सर पर रखिए। तो बलि महाराज का शास्त्रों में बहुत व्याख्या है, महिमा है, और ये इनके वचनों से ही पता चलता है। ऐसा कहा गया है कि यथा यथा, जैसे वचन आपके निकलते तथा तथा जाति कुलादि प्रमाण, आप जो बोलते हो वही आपके कुल का, आपकी जाति का, आपके ज्ञान का, भक्ति का परिचय है। आपके वचन से ही तो पता चलता है स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा। तो बलि महाराज के वचन आत्मसमर्पण के हैं, वो कह रहे कि मैं झूठा नहीं हूं। भक्तों का झूठा खाना चाहिए लेकिन भक्तों के सामने झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं झूठा नहीं हूं, मैं तीसरा कदम दूंगा और आपके अनुसार ही दूंगा। इदम क्षेत्रम, ये शरीर गीता में आपने कहा है तो मेरे सर पर रखिए। देखो हमको दो बातें इस प्रसंग में हम प्रवेश करें उसके पूर्व चिंतन स्मरण में आ रही है कि हम भगवद गीता पर विचार करें अर्जुन श्रोता है और श्रीमद् भागवत का विचार करें तो परीक्षित। तो ये अर्जुन के पोते हैं, अर्जुन के पोते अभिमन्यु, उसके पोते परीक्षित। मतलब ये जो पोता है वो दादा से भी बढ़ के हो गया। भागवत का माध्यम परीक्षित को बनाया भगवान, उसी तरह इनके दादा प्रहलाद है जिसने भगवान नरसिंह देव के कर कमल को शिर पर प्रसाद में पाया। यन्मे शिरस्तु, प्रहलाद जी ने स्तुति में कहा भी है, न भवम न रमायाम। और आपने आपके चरण कमल की प्राप्ति के लिए की बात छोड़ो, आपके हस्त कमल की प्राप्ति के लिए भी लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी सब प्रार्थना करते, लेकिन मैं असुर कुल उत्पन्न होकर भी आपके हस्त कमल की प्राप्ति कर लिया। शीरसी देही न सीकराग्रहम, जैसे गोपीजन प्रार्थना करती है इसी ब्रजभूमि में कि हे श्याम सुंदर आपका हस्त कमल हमारे सर पर रखिए। तो भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद जी के ऊपर अपना हस्त कमल पधराया, लेकिन ये प्रहलाद के पोते पौत्र संस्कृत में एक कदम आगे बढ़ गए कि उसी भगवान का द्वितीय विग्रह स्वरूप केशवधृत नरहरि रूप और उसके बाद केशवधृत वामन रूप चरण कमल को पा गया, बढ़ गया ना एक। वो तो हस्तकमल भाई, ये तो चरणों को अपने सिर पर कहते हैं कि रखिए मेरे। और भगवान वामन देव ने पूरा विश्व जानता है कि अपना श्री चरण, जिन चरणों से गंगा निकली है, जिन चरणों का ध्यान मुनिंद्र देवेंद्र लोग करते रहते हैं, या जिन चरणों में लक्ष्मी जी सदा सेवारत रहती है, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, उसको बलि महाराज ने अपने शिरों का मुकुट आभूषण बना लिया। इसीलिए बलि त्रिलोकी में विख्यात हो गए। और ये बलि महाराज का पावन चरित्र हम श्रवण करने जा रहे हैं। यही बातें हैं, भजवे को दोई सुधर नर के हरि दास, भजन दो का ही करना है, या तो हरि का या हरि के दास का। इसी बात को निमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने कहा था सूत जी के चरणों में प्रथम स्कंद में, तत्कथ्यता महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम। हे महाभाग सूत जी, सौभाग्य से आप मिले हो, कृष्ण कथा कहिए, अथवा कृष्ण कथा नहीं कहनी आपको तो तत्पदाम भोज मकरंद लिहाम सताम, श्री कृष्ण के चरण कमलों से प्रेम करने वाले प्रेमी भक्तों का चरित्र सुनाओ। या तो भगवान की कथा कहो या भक्तों की, अन्यथा असत आलापे किम आयु व्ययम परम, और दूसरी अन्य व्यर्थ वार्ता करके हमारे समय को हमें बिगाड़ना नहीं है। या तो भक्त की कथा या भगवान, और दोनों एक सिक्के की दो बाजू है। जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ करो भक्त की कथा अपने आप आती है, पांडवों की कथा प्रारंभ करो प्रभु की कथा अपने आप प्रवेश हो जाती है। कृष्ण कथोदयम, जैसे देवकी के गर्भ से कृष्ण जन्म लिए, ऐसे ही भगवान के भक्तों से भगवान की कथा जन्म लेती, फिर मुख से कहिए या चरित्र से। इसलिए कथा तो बहुत सुनी, लेकिन कथा सुन सुन के अपनी ही कथा बन जाए तब कथा सुनना सार्थक है। वृंदावन धाम में रहते हैं, ये गोस्वामियों की भजन भूमि है, और जिसके विषय में श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, भूत्वा दीन गणेश को करुणया कौपिन कंथाश्रितो। इतनी कथा सुनी लेकिन फिर भी कंथा कंथा धारण न करा दे तो वो कथा क्या कथा है। मतलब जीवन में पूर्ण वैराग्य के साथ कृष्ण अनुराग का जन्म होना चाहिए, और ये केवल रसिक वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। तो श्री वृंदावन धाम में वास सत्संग ये बड़ा दुर्लभ है, बार बार बनत नहीं है संजगनो, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन भगत को संग, जो शिल प्रभुपाद की कृपा से हमें तीनों सार्थक हो रहा है, और इसका हमें परम लाभ लेना चाहिए। प्रथम ही सखियन कृपा मनावहु, जाकी कृपा रस कणिका पावहु। ललिता विशाखा आदि ज्योत सखी वृंद, इन सखियों के चरणों में हमेशा सेवा भाव से आश्रय के साथ यही भिक्षा मांगनी है कि युगल की सेवा रस लीला का आनंद हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो, क्योंकि सखी बिना लीला संभव नहीं होती ब्रज में। तो श्रीमद् भागवत प्रेम भक्ति रस का भंडार है, इसके अक्षर अक्षर में आनंद के साथ रस प्रेम भरा गया है, और हम इसका सही रूप में भागवत का आश्रय भक्त भागवत के मुख से ले तो हम भी परम धन भक्ति के वारस बन सकते हैं। तो बलि महाराज बड़े भाग्यशाली है कि भगवान का आत्मनिवेदन प्रेमा भक्ति को प्राप्त किए हैं। तो आज वामन देव का पावन पवित्र प्रागट्य जन्मोत्सव है, और उसी उपलक्ष में वामन चरित्र सिंधु से कुछ बिंदु शुक मुखात का हम आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। 15वें अध्याय 8वें स्कंद से वामन चरित्र प्रारंभ होता है। 14वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर सुनाया कि हे राजन, अभी जो सप्तम मन्वंतर चल रहा है, मन्वंतरों की कथा कहते हैं, 8वां स्कंद मन्वंतर है, 9वां ईशानु कथा भागवत के 10 विषय अंतर्गत, और मन्वंतर की कथा कहते हुए सुखदेव जी भविष्य बोलने लगे कि 8वां मन्वंतर जब आएगा वो सावर्णी मनु होगा उसमें, और सावर्णी मनु में इंद्र बलि होंगे, क्योंकि मन्वंतर जब सरकार बदलती है तो सप्तऋषि मनु ये सब 6 वस्तु बदल जाती है। भागवत का अध्ययन आप करते होंगे तो समझेंगे इन बातों को, लेकिन ये सब सिलेक्टेड सरकार है, याद रखिएगा। ये पृथ्वी पर इलेक्शन होता है, भगवान की सरकार में क्या होता है, सिलेक्शन होता है, जो व्यक्ति जिस सीट के योग्य है वही आता है। यहां तो कुछ मूर्ख लोग वोटिंग इधर उधर करके भी किसी को भी बिठा सकते हैं। आज कलयुग की यही तो करुणा है कि सबसे बड़ी पीठ राजपीठ और उससे भी बड़ी पीठ व्यासपीठ, वहीं पर अनधिकारी लोग बैठे, जैसे भी पहला दर्शन मेरा ही आप कर रहे हो, इसका साक्षात उदाहरण मैं ही हूं। अधम शिरोमणि भी आसन पर आरूढ़ है, लेकिन आप सब वैष्णव हो। चाणक्य का श्लोक याद आता है, प्रसाद शिखर आरूढ़ा काकम किम गरुड़ायते, कौवा क्या शिखर पर बैठ जाए तो भी गरुड़ थोड़ी हो जाएगा, कौवा तो कौवा ही रहेगा, और गरुड़ यद किंचित नीचे आ जाए तो गरुड़ ही रहेंगे, है ना। लेकिन ये व्यासपीठ में प्रेम की प्रतिष्ठा हो और सत्य की सुंदरता हो, जिसकी वाणी में वेदों का वैभव हो, कोकिल का माधुर्य हो, कृष्ण प्रेम से जिसका हृदय लबालब भरा हो, जिसकी वाणी कृष्ण प्रेम रस से संसिक्त हो, ऐसा वक्ता अगर वैष्णव मिल जाए तो हमारा भागवत सुनना सार्थक हो जाए। लेकिन बड़ा दुर्लभ है ये, कलिकाल में इस तरह की योग्यता बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। प्रभुपाद ने आज पूरे विश्व में इस तरह का भागवत देने का प्रयास किया है, ये इनकी गरिमा है, इनकी महिमा है, क्या करें। लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर भी व्यास और वाल्मीकि के विचार से विरोध प्रवचन करने वाले भी बहुत है। यहां पर तो व्यास के विचार होना चाहिए, लेकिन व्यास का ग्रंथ आश्रय लेके कलयुग के वक्ता, जो वास्तव में वक्ता है, वक्ता नहीं है, क्या है, वक्ता है, वो व्यास से विरुद्ध भी बोलता रहता है, और मूर्ख जनता क्या करे, सुनती रहती है। इसलिए सावधान भी होना है हमें, रसिका भूवि भावुका श्रोता की जहां बात है गुणों की, उस अंतर्गत प्रयास करना है अपने आप को ढालने का, डालने का। तो 8वां बलि होगा जिसको वामन देव ने 3 पैर में छला था। इस तरह का संक्षेप में 14वें अध्याय में सुखदेव जी ने कहा कि 8वां मन्वंतर सावर्णी होगा, जो वरुण का पुत्र होगा, और उसमें इंद्र बलि बनेंगे, जो बलि को वामन देव ने वचन दिया था 3 पग भूमि छलने के बाद। और उसके बाद 9वां ब्रह्म दक्ष सावरणी होगा, 10वां ब्रह्म, इस तरह मनु सावरणी, 14 मनु का वर्णन 14वें अध्याय में किया। सारा मन्वंतर अवतार कथा संक्षेप में सुनने के बाद सुखदेव जी के महाश्रोता जो सामने बैठे पांडव वंशज प्रेमी परीक्षित ने एक पॉइंट पकड़ लिया। इस अध्याय की शुरुआत में 15वें अध्याय में वर्णन है श्रीमद् भागवत में, श्री राजो उवाच, राजा पूछते हैं बले पदत्रयम भूमे कस्मात हरि याचत भूतेश्वरेश्वर कृपणवत लब्धार्थो अपि तम बबंध। देखो कितना सुंदर, श्रोता की भी वक्ता के वक्तव्य पर एक पकड़ होनी चाहिए, और वो श्रोता कर सकता है, श्रोता नहीं कर सकता है। जो श्रोता है वो क्या करेगा, जो श्रोता है वो ये पकड़ेगा कि कौन सा बात हमको सुनना है। प्रभु आपने कहा कि बले बलि के पास भूतेश्वर, सभी भूतों के ईश्वर भगवान, जिसका एक अन्य नाम है हरि, पदत्रयम याचत, कथम याचत, कृपण वत याचत, एक दीन की तरह, एक कृपण की तरह तीन पैरों की याचना किए। एतत् कौतूहलम ही न, ये हमारे मन में बड़ा कौतूहल है। एतत् वेदितुम इच्छामो, मैं जानने की इच्छा रखता हूं कि लक्ष्मी का स्वामी होकर भीख क्यों मांगता है। आप लोगों ने भीख मंगे देखे है ना, वृंदावन में भी बहुत है, और वृंदावन में तो सब भिखारी ही समझ लो। कोई राधा प्रेम की भिक्षा मांगता है, कोई राधाचरण रेणु की, और कोई सब भिखारी है छोटे बड़े। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, सरस किशोरी, ये भी भिक्षा ही है। एक हिंदी कवि की बात याद आती है इस प्रसंग में। वो कहता है कि शाहों का शाह गरीब बन के आया है, शाहों का शाह कृपण दीन गरीब बन के आया है, इसी अदा से वो भक्तों के करीब रहने आया है। शाहों का शाह गरीब बन के आया है, इसी अदा से वो भक्तों के करीब रहने आया है। ऐसे देखने में लगता है कि ये लूटने गए, लूटने नहीं गए, अपने आप को लुटाने गए। देखने में लगता है कि बलि को बांधने गए, बांध लिए, लेकिन जीवन भर सदा सदा के लिए अपने आप को बंधाने गए। अहम भक्त पराधीन, जाके जगत आधीन है सो प्रभु प्रेम आधीन। पूरा विश्व जिसके वश में है वो विष्णु भक्तों के वश में है, यही दिखाने के लिए भगवान की ये बाड़ी पावन मधुर लीला है। इसलिए जयदेव कवि को भी आज याद करिए, वृंदावन धाम में राधा माधव के उपासक, छलयसि विक्रमणे बलिरद भूत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलिए सभी साथ में, छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। देखो छलयसी वर्तमान क्रिया का प्रयोग है, संस्कृत ग्रामर जानते समझेंगे। ऐसे देखा जाए तो ये लीला हो चुकी है, लेकिन छलयसी मतलब छल रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, वर्तमान क्रिया प्रयोग क्यों कर रहे जयदेव महाकवि, छल लिया गया था बोलना चाहिए। छलयसी मतलब अभी भी छल रहे हैं, इसका एक अर्थ यह हुआ कि जितनी बार वामन अवतार हुआ इनका यही काम है। अनेक ब्रह्मांडों में अभी भी लीला है भगवान की नित्य, तो अभी भी छल रहे है, छल लिया था इतना ही नहीं, छल रहे है। अब भागवत के महा वैष्णव टीकाकार श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रमाणित आचार्य श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस हरे बलि पदत्रयम भूमे या कस्मात हरि याचत पर देखो क्या लिखते हैं उपक्रम में, अत्रे यत नवम अध्यायाम, नव अध्यायाम, यहां पर नौ अध्यायों में वाम वामन चेष्टितम, वामन देव के वाम चेष्टितम का वर्णन है। वामम मनोहरम, वाम बाहुकृत वाम कपोलो, युगल गीत। वाम शब्द का अर्थ होता है कोश के अनुसार, अमर कोश के अनुसार मनोहर। ये वामन का चरित्र कैसा है? वामन वाम वामन चेष्टितम, नौ अध्यायों में वामन के वाम चेष्टा का, चेष्टा मतलब गति लीला, संस्कृत ग्रामर अनुसार गति लीला क्रीड़ा चेष्टा जिसको आप एक्शन कह सकते हो। वाम मनोहर, पूरे विश्व को ऋषि साधु संत देव सबको मन हरने वाला ये वाम चेष्टितम गाया गया है। क्या है इसमें? निग्रहो छलनो, इसमें निग्रह भी किया और छल भी किया। लेकिन बले भूयात अनुग्रह, ये देखने में निग्रह लग रहा है, देखने में छल लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये वामन का बलि के ऊपर वाम मनोहर है, एक अलग भाव भंगी से अनुग्रह मात्र है, न छलना है न दंड है। दिखता है दंड दिया, बलि को बांध दिया, दिखता है छल किया, लेकिन न छल है न दंड है, ये तो केवल अनुग्रह है। भक्तानाम अनुग्रह करोति विविधम क्रिया, और भजते तादृशीम क्रीड़ा सुत अनुग्रह भूतानाम मानुषीम तनु आश्रितम, राजपंचायती में भगवान केवल अनुग्रह विग्रह है। इसीलिए भक्तों से समझना चाहिए, ऐसे देखने में लग रहा है कि छल करके सब हर लिया। हां, यस्य अनुग्रहणामी, वो क्या श्लोक है? हरिष्य तद धनम शने, जिस पर अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ हर लेता हूं और सबसे पहले धन हरता हूं। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि ये अनुग्रह आप पड़ोसी पर करिए, प्रभु हम पर मत करिए। इसलिए न धनम न जन्म वाला श्लोक भी हम स्लोली बोलते, कहीं सुन न ले चैतन्य। अई नंदत नुंज किंकरम भाव से बोलना चाहिए, लेकिन न धनम, धन के बिना यात्रा भी नहीं होगी, ब्रजवास भी नहीं हो रहा है, कूपन के भी पैसे लगते हैं प्रभु जी, इसलिए चाहिए, क्या करे? तो कैसे कहे न धनम? अब इसको भी समझना एक अलग सिद्धांत है। न सुंदरी, वो ठीक है, लेकिन धन तो साधु को भी चाहिए आज कलयुग में, क्या करें? आवास निवास आश्रय स्थान होगा ही नहीं, यात्रा ही नहीं होगा। और चैतन्य चरितमृत, और चैतन्य बंगला भाषा का बड़ा प्यारा, चैतन्य चरित मतलब नहीं है, लेकिन एक बंगाली भक्त ने लिखा है, जे आमा के करे आश आमी करितार सर्वनाश। अब लो बताओ कौन इनकी आशा करे? जो भगवान कहते हैं कि जो मेरी आशा करता है, मुझे पाना चाहता है, उसका तो मैं सर्वनाश करूंगा, अब कैसे कोई आशा करे? जे आमा के करे आश आमी करितार सर्वनाश, तबु यदि करे आश तार आमी दासेर दास। लेकिन बाद में कहते कि मैं उसका सब कुछ छीन लूं, फिर भी वो मेरी भक्ति प्रेम में लगा है, तब तो मैं उसके दासों का भी दास बन जाऊंगा। और इस बात को केवल भक्त समझता है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे 22वें अध्याय में, जब बलि को बांध दिया गया और प्रहलाद महाराज जब पधारे, प्रहलाद जी आपने सुना होगा वामन चरित्र, तो आपने तो सब सुन ही रखा है। कुछ श्रोता तो यहां ऐसे बैठे कि ये जानने के लिए आए कि ये कितना जानता है, हम तो सभी जानते ही है, हम तो ब्रजवासी हो गए सब जानते, लेकिन देखते कि ये बंदा भी कितना जानता है, चेक करने के लिए आए होंगे कुछ लोग तो उनकी भी कुछ तुष्टि हो जाए, हम क्या कहें। देखो ये प्रेम है, पांडित्य प्रदर्शन नहीं है, श्रीमद् भागवत भक्ति, यथा हरे भगवती निणाम भक्ति भविष्यति, भागवत का आयोजन प्रयोजन उद्देश्य मात्र यही है कि श्रोता की और वक्ता की सबकी हरि चरणों में क्या बढ़े? भक्ति। इति संकल्प वर्णयन। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही कहा भागवत जी में, भागवत कहने के बाद, त्वये मदत्तम पद्मेन्द्रमूर्जितम। प्रहलाद जी आकर क्या बोले? बलि महाराज बंधे थे वारुण पास से, वामन देव ने बांध दिया था। यहां पर परीक्षित पूछते ना बबंध, एक तो लक्ष्मी का नाथ होकर भीख मांगे, ये बात समझ में आती नहीं, दूसरा जो दाता होता है उसको हार पहनाया जाता है, ग्लोरी उसका गुणगान गाया जाता है, यहां दाता को बांध दिया। हमारे हरे कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी राधाष्टमी मंदिर निर्माण में कोई डोनेशन देता है तो हम उसको क्या करते हैं? आइए आइए प्रभु जी, धारिये ये लीजिए हार। जो डोनेशन देता है उसको कहीं खंबे से बांध देंगे आप? वो कितना ही शर्ट हो आपको पता हो फिर भी क्या कहना चाहिए? प्रभु जी प्रसाद लिया क्या? और भक्तों के निकलो तुम, इसको देने दो पहले, करते कि नहीं बताओ? क्या करे? क्योंकि नीति है शर्ट दाता, श्री सूरी जी ने लिखा है कि दाता कितना ही शर्ट हो यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में, जब वो ब्राह्मण लोग नहीं दिए और ये सब सखा लोग आए तो दर्शनम लौकिकीम गति, भगवान ने लौकिक गति बताया कि संसार में ऐसा ही होता है, भिखमंगों को कभी मान नहीं मिलता। ऐसे इस्कॉन के भिखमंगे भक्त मान भी चाहते, मान के साथ दान चाहिए, हम प्रोफेशनल है, हम लोग बेगर भी सामान्य थोड़ी है, कृष्ण के है। तो भगवान ने कहा तो अपमान तो होता है, गाली तो नहीं दिए, मारे तो नहीं, कम से कम सामने ही नहीं देखे ना वो ब्राह्मण। भगवान अपने सखाओं को समझाते हैं, वहां पर कहते हैं कि जरीश्वरी दाता कितना ही शर्ट हो फिर भी उसको गुणगान ही करना चाहिए। जैसे ये लोग गुणगान किए थे, हे भूमि देवा सुनुता, सुनिए निवेदन हमारा, हाथ जोड़े थे, कृतांजलि पुटा दंडवत पतिता भूवि, भागवत जी में आए है सब बात। तो यहां तो बांध दिया गया, तो प्रहलाद जी ने जब अपने पोते का सब कुछ लूट लिया गया वामन के द्वारा और बंधा हुआ देखा तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, पढ़िए महाजनों के वाक्य भागवत जी में है। प्रहलाद महाजन है ना जनक भीष्म, और वो कहते हैं कि त्वये मद्दत्तम पदमेंद्र मूर्जितम, हे प्रभु आपने ही इसको ये इंद्रपद दिया। अभी बैठ गए थे, सौवा अश्वमेध चल ही रहा था, इंद्रासन तो बल थे हाजिर कर ही लिए थे, जीत ही लिए थे। हतम तवेदाद्य तवेव तदेव शोभनम, हे प्रभु आप श्याम सुंदर हो, आपका देना भी सुंदर है और जितना ही भक्त को देना सुंदर है ना लेना भी उतना ही सुंदर है। सुंदर है किम सुंदरम, जो स्वयं स्वभाव से सुहृत हो, करुणावान हो और जो सुंदर हो, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते मधुरा राधा इति तस्य पति मधुराधिपते अखिलम मधुरम, तो उसका सब कुछ मधुर है, उसका देना भी मधुर है तो लेना भी। लेकिन ये जिसका हृदय भक्ति करके मधुर बना है वो मधुर भक्त ही समझ सकता है इस बात को। तदेव शोभनम, जैसे आपने दिया तब भी बड़ा सुंदर था, वही भगवान ले लेते हैं वो भी उतना ही। क्यों? क्योंकि विभ्रंशितो यह श्री आत्म मोहनात, जो धन आत्मा को मोह में डाल देती है, उस भक्त को भ्रंशित कर देती है, उस धन को भगवान ले। लेकिन वो गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगाता है तब तो भगवान उसको और धन देते। प्रभुपाद जी का अलाहाबाद का दुकान चौपट कर दिया श्याम सुंदर ने, लेकिन अमेरिका में करोड़ों की संपत्ति दे दी इस्कॉन की प्रभुपाद को, है ना। जो साधु सेवा के लिए निकल जाता है तो भगवान की कृपा करने का अदा स्टाइल भी कुछ अलग है, इनका अंदाज ही कुछ निराला है, एक अलग अंदाज से नजरअंदाज करते हैं अपने भक्तों को। लेकिन वो प्रेम ही समझ सकता है इस अंदाज को, इस अदा को, क्योंकि श्याम सुंदर की लीलाएं भी इतनी महिमावान है। तो प्रहलाद के वचन हमें नहीं सुनाना, वो आगे है, आप पढ़ सकते हो 22वें अध्याय का ये 16 नंबर श्लोक। प्रहलाद उवाच, भगवान को थैंक यू कहा कि अच्छा किया आपने हमारे पोते को बांध दिया, इतना सुंदर लग रहा है, देखो बंधा हुआ कोई सुंदर लगता है? वास्तव में सुंदर लग रहे थे, बलि महाराज का भाव जो था, वो प्रणाम करना चाहते थे लेकिन बंधन के कारण प्रणाम नहीं कर पा रहे थे, तो केवल मानसिक प्रणाम किए थे चक्षु से, तो भाव से बड़े सुंदर लग रहे थे। और आपने बढ़िया कृपा की, ऐसा कृपा तो मुझ पर नहीं किया प्रभु आपने, जितना कृपा आपने मेरे पोते पे टकला कर दिया फिर भी कृपा किया, सब कुछ ले लिया, सारे बंधु बांधव छोड़ के चले गए, गुरु जी भी श्राप दे के विपरीत हो गए, इनका सारा धन लूट लिया गया, ऊपर से वामन देव ने डांटा इसको, बड़ा सत्यवादी बनता है, गुरु की बात नहीं माना, ला तीसरा पैर कहां रखू, और जो अपने दिए हुए वचन के अनुसार दान देने की संकल्प करे नहीं नरक में जाता है। इसके सारस्वत अर्थ भी है, र लयो भेदात निरयम याति, निरयम नहीं निलयम याति, निलय माने स्वर्ग, भगवत धाम जाएगा वो तुम। तो बहुत कुछ वामन देव ने कड़वे वचन, इसलिए यहां पर निग्रह शब्द का अर्थ जो श्रीधर स्वामी कहते हैं निग्रह छलन, छल भी किया निग्रह भी किया, वंशीधर जी इसकी टीका में लिखते निगरो बदबंध बांध दिया, भर्त्सने अपि मर्यादाम बंधनम, भर्त्सना करते हुए बांधा, बलि को बांध दिया तो ऐसा नहीं तुमने दान दिया फिर भी लगता है कि वापस नहीं ले लेगा इसलिए बांध रहा हूं, ऐसे नहीं बांधा। भर्सना कर देगी तू बांधने योग्य है दंड देने योग्य, नरक जाएगा, गुरु की बात नहीं माना, बड़ा होशियारी कर रहा, अपने आपको अभिमान में था ना कि तीन पैर ज्यादा मांग लो, कहीं ज्यादा मांग लेता तो क्या करता, तो तू भी तीन भी नहीं दे रहा है, इस तरह गुस्सा होके। आजकल का भिखारी इस तरह करे तो आप लोग क्या करोगे बताओ, दिल्ली बंबई का ट्रेन पकड़ा दोगे यहां से, बिना टिकट के चढ़ा दोगे उसको मथुरा से, ऐसी कोई करे तो। लेकिन वामन देव ने ये किया है, आप पढ़िए भागवत में, और उसके बाद भी वामन देव ने वास्तविकता बताई है, जन्म ऐश्वर्य सब कुछ हो लेकिन फिर भी यज्ञ स्तंभ तत्राय मद अनुग्रह, फिर भी उस भक्त को अभिमान न हो तो ये मेरा अनुग्रह है, इस तरह की बातें हैं। तो यहां पर आइए फिर से वापस उसी जगह, छलयसी विक्रमणे क्रम विशेष क्रम बढ़ाया, तीन छोटे पैर थे उरुक्रम, पहला पैर भू भुव स्व तप जन महर पार करके सत्य लोक में चला गया। तो ये अद्भुत वामन है, हम सब क्या है भूत है और भगवान क्या है अद्भुत है, बस इतना ही फर्क है। कोई हमें पूछता है ना कि भगवान में और हम में क्या फर्क है, तो मैं यही कहता हूं तू भूत है भगवान अद्भुत है, बस इतना ही फर्क है। बंबई के लोगों को ऐसे ही समझाया जाता है। और भूत बोलने पर आप गुस्सा मत करिए, गीता में भगवान ने हम सबको भूत ही कहा, ईश्वर सर्व, और कुछ लोग भूत जैसे है भी आज भी, कोई चिंता, वो भूत भी शर्मा जाए कि ये तो हमसे भी आगे बढ़ गया, ऐसे खतरनाक काम करते हैं मनुष्य लोग, खास करके शहर वाले। इसलिए शहरी लोग हमको पूछते हैं प्रभु जी गांव में ही भूत होता है शहर में क्यों नहीं होता, हमने कहा शहर में आदमी भूत जैसे बन गए तो भूत भी बेचारे भाग गए कि ये हमसे खतरनाक लोग है। अद्भुत अभूत अद्भुत वामन, वाम मतलब छोटे से है लेकिन अभी अद्भुत वामन हो गए हैं, वाम चेष्टितम श्रीधर स्वामी कहते हैं। यहां पर ये कह रहे कि हरे कस्माद याचत, चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिखते हरे शब्द पर सर्व हरणम समर्थ इति हरे, सब कुछ हरने में जो एक्सपर्ट है वो हरने ही आए हैं, हरि शब्द अनेक अर्थ, महाप्रभु ने कहा बलि का अमंगल हर लेंगे, ये असुरों के बीच में से ये जो अभिमान बलि में कुछ किंचित आ गया था कि अहम पृथ्वी सम्राट अस्मि, मैं यहाँ का राजा हूं, सब कुछ देने में समर्थ हूं, भगवान सब कुछ सह लेते अपने भक्त का लेकिन अभिमान नहीं सहते। इसलिए वामन देव जब बोले थे कि तीन पदानिया तीन पैर दे दो, तब बलि महाराज ने कहा था हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला जमीन नौकर चाकर जो भी मांगना है वामन मांग लो। जब वामन देव गए थे स्वागतम नमस्तुभ्यम हे ब्राह्मण, साक्षात तपर्षिणाम वपु धरत, महर्षियों का तप जैसे शरीर लेके आया हो इतना तेज वामन के शरीर से निकल रहा था। नर्मदा नदी पृथ्वी पर भी है, श्रील प्रभुपाद चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में लिखते हैं भागवत जी में कि नर्मदा नदी स्वर्ग में भी है, जैसे गंगा स्वर्ग में भी है यहां पर भी है पृथ्वी, ऐसे नर्मदा भृगुकच्छ क्षेत्र जो था नर्मदा नदी के तट पर, जहां भृगुवंशी शुक्राचार्य के सानिध्य में बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ 99 कर चुके थे और 100वां कर रहे थे, उसी समय वामन एंटर होते हैं वहां पर, भृगुवंशी भृगु के ही पुत्र थे शुक्राचार्य, प्रियवत की पुत्री उजस्वती से विवाह हुआ था जिससे देवयानी का जन्म हुआ था। शुक्राचार्य का भी बहुत सुंदर बातें हैं, जानना चाहिए भक्तों को, क्योंकि कवि नाम उष्णा कवि, आज कई शुक्राचार्य होते ना सबसे बड़ी दुकान उसकी चलती, क्योंकि उसके पास जो मंत्र है किसी के पास नहीं है, कौन सा है वो संजीवनी, मरे हुए को जिंदा कर दे, आज मिल जाए तो बताओ कितना अब जो डॉलर कमा सकते हैं शुक्राचार्य, कोई मरता ही नहीं, रेशन कार्ड से आधार कार्ड किसी का कैंसिल ही नहीं होता बताओ, लेकिन अच्छा है कि वो नहीं है, फिर भी ट्रेन में बस में इतनी गर्दी है, अगर वो होते तो कितनी गर्दी होती, मरते ही नहीं लोग। और जानते कौन दिया शुक्राचार्य को ये मंत्र संजीवनी, कौन दिया, नरेंद्र मोदी जी, कौन दिए, भगवान शिव दिए है इसको, गोपेश्वर महादेव है ना आपके क्षेत्रपाल, सदैव देवो गिरीश चंद्र मौली ददार मूर्धना परयाच भक्त्या सुखदेव जी इसी वामन प्रसंग में शंकर जी को याद करते कि गिरीश गिरो शेते इति गिरीश, चंद्रमौली भगवान शिव जैसे कृष्ण का चरण कमल का जल सर पर लगते हैं गंगाधर नीलकंठ, ऐसे ही वामन का चरणामृत धोके बलि ने अपने सर पे लिया, जब चरण धोएंगे तो ये उससे वहां पर वर्णन है 18वें अध्याय में। तो भक्तों वो क्या था कि ब्रह्मा के पुत्र है अंगीरा और ब्रह्मा के ही पुत्र है भृगु, अंगीरा से हुए बृहस्पति और भृगु से हुए शुक्र। कुछ लोग कहते हैं शुक्रवार को जन्म हुआ इसलिए शुक्र है, लेकिन पुराणों में शुक्र नाम क्यों पड़ा इसकी भी एक अलग कथा है, कभी भक्तों से जान लेना। शुक्राणु किसे कहते हैं, सात सप्त मेधा होती है उसमें, बीर्ज को कहते हैं ना शुक्र, तो उनकी भी एक कथा है कि क्यों शुक्र नाम से विख्यात हुए। लेकिन शुक्र अब क्या हुआ, भृगु मुनि तप करने गए तो अंगीरा से कह के गए कि आप अपने बेटे बृहस्पति के साथ मेरे बेटे शुक्र को भी पढ़ाओ वेद शास्त्र। उसने कहा ठीक है भाई है भतीजा है जाइए। भृगु गए तप करने, अब ये पढ़ने में बड़े एक्सपर्ट थे, बृहस्पति से भी एक्सपर्ट है, वेद विख्यान सब कुछ बढ़िया से याद कर लेते पढ़ लेते। उसी कारण अंगीरा जी को थोड़ा लगा कि ये बेटा तो आगे निकल जाएगा मेरे बेटे से, ये होता है सब जगह होता है आप ध्यान रखिए, ईर्ष्या द्वेष रजस तमस मई जगत है भाई, मेरे बेटे से आगे निकल जाएगा तो किसको ध्यान कम देने लगे। अब वो जितना एक्सपर्ट है वो गुरु को भी समझ लेगा ना, आजकल के लोग जो गुरु बनना चाहते हैं वो ध्यान रखे कि शिष्य गुरु के भी गुरु है, ये गुरु लोग वहम में है, वो समझते कि मेरा शिष्य है उसको पता नहीं कि हमारा भी ये गुरु, ये कलयुग है भैया, तुरंत समझिए कि हमसे कुछ ये बेमानी कर रहा है, हमको कम सिखा रहे हम कम पढ़ा। सीधा जाके बोले अंगीरा जी आप बढ़िया से पढ़ाइए और नहीं पढ़ाना चाहते तो हम पढ़ना चाहते पढ़ ही लेंगे, आप ध्यान नहीं दे रहे। बोले नहीं नहीं मैं तो बढ़िया से पढ़ा। बोले आप अपने बेटे को जो बात पढ़ा रहे हो बृहस्पति को हमको नहीं पढ़ा रहे हो, अब बहुत हो गया, एक बार वार्निंग दिया 8 दिन चेक किया उसके बाद जय सिया राम राधे राधे। बोले बढ़ाओ अपने बेटे को, बढ़ाओ अपने बेटे को आगे, हम तो पढ़ ही लेंगे। गए गौतम के पास और गौतम की आज्ञा से गए कैलाश में, शंकर जी से पढ़े तब किए, बताओ ये गणपति के बाप से पढ़े है, आज महाराष्ट्र में यही चल रहा है गणपति बापा इसलिए याद कर, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के जो अधिपति है उनके बाप से ये पढ़े है, पढ़ ही लेंगे हम तो। और भृगु आने के बाद पता चला उनको और तब शंकर जी से कहा प्रसन्न तप करके, प्रभु जिसको पूरे विश्व में किसी के पास जो मंत्र विद्या नहीं वो हमको दीजिए। और उसकी तप से प्रसन्न होकर आशुतोष भोले बाबा ने कहा कि संजीवनी मंत्र देता हूं, वन मैन शो, न भूतो न भविष्य, ये मंत्र आज तक न किसी को मिला है न बेटा मिलेगा, शंकर जी के पास है भाई, अमर कथा भी उनके पास है, मंजी मंत्र भी उन्हीं के पास है, श्रीमद शंभु मुखेंद्र सुंदर वर शंकर जी से पढ़े है ये। और अच्छा इसलिए प्रश्न होता है ना कि इतने बड़े आचार्य मतलब कवि नाम उष्णा कवि वेद नीति के विद्वान संजीवनी मंत्र असुरों के गुरु क्यों बने, इसी के कारण एक कारण ये बृहस्पति गड़बड़ की है, ये देवताओं के गुरु बने तो तुम्हारे विरुद्ध चलना इसके गुरु बने। और विष्णु से भी वैर, विष्णु के तत्व से ज्ञाता है शुक्राचार्य लेकिन कार्यक्रम में लीला में उससे उनके प्रति जमता नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने भृगु पत्नी ख्याति का वध किया था, यथा शुक्र की माता का, क्योंकि देवदानों में जब युद्ध चलता रहता है तो जो वो भी शक्तिमती थी दक्ष कन्या ख्याति भृगु पत्नी और दानवों की सहायता कर देती थी, तो देवता लोग बोले कि ये एक स्त्री के तप बल के कारण सती बल के कारण दानव पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है, और भगवान विष्णु ने कहा उसी को मिटा देता हूं, सुदर्शन चक्र से कर दिया रास्ता साफ। और शुक्राचार्य को पता चला मेरी मदर मेरी मम्मी को विष्णु ने सुदर्शन से काटा, अब इससे हमारा जमेगा नहीं, बाकी जानते सब कुछ है शुक्राचार्य के, आप नीति पढ़िए, नीति नहीं कम से कम भागवत में जो शुक्राचार्य वो बोले वो पढ़ेंगे ना, तो कृष्ण तत्व वेत्ता है ये पुरुष। लेकिन फिर भी स्वभाव क्रिया के कारण पता नहीं क्या कार्यक्रम रहा कि वह रहे तो हरि सबको, इसलिए तो देखो पर्दाफाश कर दिए थे वहां पर, एषवे विष्णु साक्षात देवानाम कार्य साधक बलि से कह दिए कि ये विष्णु है, वामन बन के छोटा बना है ना, कश्यप का अदिति के घर जाता जन्म लिया है और इंद्र का काम करने के लिए भीख मांगने आया है, तू बहुत होशियारी करता है कि तू दानी है, दे दूंगा, इसको चाहिए तो दे दे, लेकिन इसको कहां चाहिए, ये तो तेरे शत्रु इंद्र को दे देगा, इसलिए मत देना। बलि गुरु तेजो, गुरुजी मना कर रहे, कुछ बातें गुरुजी मना करते फिर भी की जाती है, अब ये कब क्यों कैसे की जाती है उसके लिए बड़ा समझना पड़ता है कि सब जगह अनुकरण अनुगमन नहीं होता ना, अपनी वैधानिक स्थिति देखनी चाहिए। मीरा की कथा सुन के मीराबाई थोड़ी हो जाएंगे हम लोग, हम तो बाई ही नहीं है, कामवाली बाई हो सकती है, मीराबाई कहां हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस ये महामंत्र कुछ भक्तों को जगाने के लिए था, जीव जागो, गोरा चांद इसी से जगाते थे तो हमने भी यही परंपरा में कर दिया। इतनी सुंदर सुंदर बातें, मैं पूरा प्रसंग नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन इस वामन चरित्र के कुछ विशेषताएं, कुछ रस और रहस्य है, उसका उद्घाटन हो रहा है। माया मानव कम हरि, जो जो शब्द दिए हैं वामन चरित्र में उस पर हमारे आचार्यों ने क्या व्याख्या की है, और यही हमारा धन है, इसको सुनने समझने के लिए ब्रजवास करना है, इसको सुनने समझने के लिए हमें गुरु वैष्णव आश्रय करना है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं हमारे लक्ष्य को और फालतू वस्तु में पूजा पाठ प्रतिष्ठा में शारीरिक सुविधा में पड़ जाते हैं, यही हमारी दुर्दशा है। दुर्देव भी दृश्य में आ जनी न अनुराग, फिर भी हरि कथा हरि कीर्तन में अनुराग नहीं हो रहा, लेकिन आशा एकमात्र है कि जिसका हरि कीर्तन कथा में अनुराग है उन भक्तों की शरण ली जाए, उनकी कृपा हो जाए, तब हमें भी ये धन प्राप्त हो सकता है। कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतोपि लभ्यते वाली बात हो जाएगी, तत्र लोल्यमपि मूल्यम एकदम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, ये शास्त्रोक्त बात है। अच्छा छलयसी की बात सुन लीजिए, अब विक्रमणे अद्भुत वामन, अब देखो जयदेव महाकवि वहां पर पद नख नीर जनित जन पावन, अब सब जानते अंगूठा पार कर गया कारुण दक्षा, दिव्य जल भगवान का वो अंगूठे के माध्यम से ब्रह्मलोक में आया, ब्रह्मा जी ने धोया, वो गंगा के रूप में आया, ओके, पंचम स्कंद भागवत में ये वर्णन है गंगा अवतरण प्रसंग में। लेकिन यहां जयदेव जी पद नीर जन कह सकते थे, लेकिन पद नख नीर, पद नख नीर, पद नीर भी हो गया पादोदक, तो इसका एक आचार्य टीका में लिखते हैं कि वामन देव का चरण इतना बड़ा था, बड़ा ही होगा ना, इतना पैर बड़ा किए हैं, तो ब्रह्मा जी ने जो अपने कमंडलों से जो अर्ध्य छोड़ोश उपचार से जो चरण धोया वो केवल भगवान के नख को धो पाया बस, मतलब मात्रा कम थी, ये इनका अधिकता था। जैसे कोई बड़ी वस्तु हो और आपके पास पात्र और सामग्री कम हो तो क्या करते, उतना मात्रा में ही होगा ना, तो ये जो ब्रह्मा जी क्या कर पाए, वामन देव के चरणों को पूरा नहीं धो पाए, वामन देव के चरणों के अंगूठे के एक पद नख नीर। इसमें एक रहस्य और भी है कि निराकार वालों का भी कोक जो कहते हैं ना निराकार अच्छा है, हम लोग कहते हैं हाँ निराकार की भी भजन करनी चाहिए, बोले वैष्णव हो के निराकार का पक्ष लेते हो, बोले नहीं वो हमारा विष्णु है ना वो निराकार में हो गया है, ये गंगा भी क्या है नीर है और भागीरथी है ना जलसम चैतन्य चरितामृत, गंगा कोई सामान्य तो है नहीं, इदम ही गंगम, तो अगर गंगा की उपासना करो तो भी गोविंद चरणों तक पहुंच ही जाओगे। अतः नीरम उपास्य है एक श्लोक है कि मैं तो उस नीर की उपासना करता हूं जो विष्णु के चरणों से संबंध रखता है, तो इस तरह मैं निराकार की ही निराकार में जो प्रभु है उनका उपासना, मतलब गंगा शरण की बात है जगन्नाथ पंडित ने लिखा है गंगा चरित्र में। एनीवे लेकिन यहां पर देखिए पद नख नीर जनित जन पावन, जिनके नख में, अब नख के भगवान वामन देव के नख में भी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की कांति फीकी हो जाए ऐसा प्रकाश, और भगवान के ये दिव्य चरण है, और बलि के सामने यही नख पग दिखाया था कि बस ये मेरे तीन पैर, वहां पर अहंकार अधिभूत बलि जी ने बोला है भागवत जी में, गाम पृथ्वी चाहिए, अश्व हस्ती सोना चांदी कितना जमीन चाहिए महाराज बोलो, भगवान कहते मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, देखिए इनका संतोष, मैं तो ब्राह्मण हूं, संतोषी हूं, ज्यादा नहीं चाहिए, बस तीन पैर। बलि ने कहा ओके तीन पैर, लेकिन प्रभु अभी आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, आगे जाके आपका मन बदल जाए, शादी करने का विचार हो जाए, तीन पैर में आपकी पत्नी रहेगी कहां? अभी बालक हो, लेकिन बाद में मन बदल सकता है भाई। तो एक काम करो, मेरे पास इतने बड़े बड़े असुर है जो एक कदम में 100 किलोमीटर कूद सकते हैं, और आगे जाके जमीन के भाव भी बहुत बढ़ने वाले, रोड टच मिलेगा तुमको। तीन पैर में बाथरूम भी नहीं बनेगा, किचन भी नहीं बनेगा। तो एक काम करो, मेरे भक्तों से मपवा लेता हूं ताकि आपके नाम, क्योंकि कोई बलि के द्वार पर आए, क्योंकि कल दुनिया ये कहेगी कि ये बच्चे को मांगने नहीं आया तो क्या बलि को देने भी नहीं आया? बलि कहते कि हमारे दरवाजे आकर किसी और का दरवाजा खटखटाना पड़े तो इसमें हमारी हानि हो जाएगी। देखो ये दाता है, हम लोग तो क्या कहते, ये ले 100 रुपया, इधर जा इधर जा, लेकिन दाता वही है जो उसको कहे कि मेरे आने के बाद कहीं दूसरे घर तुझे, और दूसरे घर जाएगा तो मेरी कमी होगी, बोलेगा कि वहां गया फिर भी कुछ मिला, पूरा नहीं हुआ तो अपनी कमी होती है। बलि कहते कि हमारे द्वार पर आकर भी किसी और का दरवाजा खटखटाना पड़े तो ये मेरी निंदा हो जाएगी, इसलिए जीवन भर आपकी पीढ़ियों में कभी कम ना हो, इतना धन भूमि में दे सकता हूं, और मैं मपवा लेता हूं। वामन देव ने कहा नहीं नहीं, मैं तो संतोषी, मुझे तो तीन ही पैर चाहिए, और अपने ही तीन पैर। अब बेचारे बलि को कहां पता था कि ये पैर पाताल में पहुंचने वाला है, आकाश में पहुंचने, वो तो समझ ही रहे थे। तो वहां पर बलि का अहंकार प्रकट हुआ है, इसी बात को बलि पत्नी ने निवेदन किया है वामन चरणों में, कृतमाना, वो ये कह रहे थे कि आपने बराबर किया इसका ट्रीटमेंट, पत्नी उसने सुनी थी और अभी कृपा किया, वो भी बंध्यावली के वचन भी है, जैसे नाग पत्नी का वचन, न्यायो ही दंड कृतकिल विषम तवावतारम खल निग्रहाय, प्रभु आप तो अनुग्रह ही करते हो, न्याय ही करते हो, पत्नी ने भी यही कहा। और वैसे भी अपना पति मार खा रहा हो तो कुछ कुछ पत्नियों को मजा आता भी है कि जो काम हम नहीं कर पाए भगवान कर रहे, इनको तो यही मिलना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट तो कोई करने वाला मिला कम से कम। और दूसरी बात यह है कि भाई अपना पति मार खाए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सामने वाला शत्रु बलवान हो तो उसको अच्छा कहना पड़ता है, जोर लगाने पर तो और मारेगा, इसलिए उसको कहना पड़ता है आपने बड़ा अच्छा किया, ये यही लायक था, तो उसको दया आ जाएगी भाई चलो, नहीं तो होशियारी करे सामने गहरे छोड़ दो तो और मारेगा अच्छा। तो ये भी है, कला है पत्नियों की, पत्नियों की बुद्धि कम नहीं है, पति की सारी बुद्धि यूज हो जाती है फिर अपनी चलाती है, बुद्धि है इन लोगों में। न जस्य सम बला स बला। विंध्यावली बड़ी प्रेमी वैष्णवी नारी है जो बलि महाराज के उनके वक्तव्य बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने तो यहां तक कह दिया प्रभु कोई कपट बुद्धि से भी आपको दुर्वा या दल छोटे से कुछ पूजा करे तो आप उसको क्या क्या दे देते हो, इसने तो सब कुछ दे दिया, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो। अब देखो चतुर्मुख को भी समझ में नहीं आ रहा, वामन चरित्र वामचस्तितम मनोहरम। और यहां पर सुखदेव जी के चरणों में बलि यही पूछ रहे कि एक तो क्यों छल लिया, ऊपर से बांध दिया, लक्ष्मी का नाथ होकर भीख मांग लिया, हमको तो प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, इति कौतूहलम, ये मेरा कौतूहल है, इसलिए कृपा करके हमको समझाई। तब सुखदेव जी वहां गंगा तट पर सुंदर वामन चरित्र सुनाते हैं भक्तों, वो कहते हैं कि देवताओं के आक्रमण से बलि असुर शरीर धन सब नष्ट हो गया, लेकिन भृगुवंशी शुक्राचार्य की कृपा से शरीर भी जीवित हो गया, यश भी धन भी सब प्राप्त हो गया, विश्वजीत यज्ञ कराया, उसमें रथ निकला और बलि को उस पर आरूढ़ करा के इतना तेज तलवार से युक्त बलि इतना तेजोमय कि स्वर्ग गए तो सारे देवता लड़े बिना ही भाग गए, बिना लड़े भागना पड़ा। गुरु चरण में निवेदन किया देवताओं ने, बलि में कैसे आ गया तब? बोले उसने गुरु की सेवा की है, बोले हम लड़ेंगे, बोले मरोगे, जिसने अपने गुरु को प्रसन्न किया उसको भगवान भी नहीं हरा सकता, निकलो। बोले क्या करे, बोले वृंदावन दिल्ली बंबई कहां पर भी भाड़े फ्लैट मिले खरीद लो, घुस जाओ उसमें। देखो जो लोग स्वर्ग जाना चाहते उनको सुनना चाहिए भागवत, क्षीणे पुण्य की नहीं है, पुण्य होते हुए भी भागना पड़ा, गीता तो कहती है कि क्षीण पुण्य होने पर, अब ये अभी तो था लेकिन फिर भी निकलो, स्वर्ग कोई सुरक्षित जगह नहीं है।
इंद्र आदि सब देवता भागने लगे, भागना पड़ा, क्योंकि गुरुजी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, एक सलाह दे सकता हूं कि कहीं रास्ता मिले वहां छुप जाओ, भाग जाओ बस। और सब देवता खाली करके भागे, तब ये बैठे बलि। लेकिन गुरुजी उसके शुक्राचार्य ने कहा कि जीत तो लिया लेकिन टिक नहीं पाएगा, टिकेगा वह जो सौश्वमेध यज्ञ करेगा। बोले गुरुजी करो, इंद्र पद प्राप्त करने के बाद भी यज्ञ किया बलि ने, नहीं तो पद मिलने के बाद यज्ञ नहीं होता, संकीर्तन नहीं होता, फिर तो जलसा पार्टी आराम होता है, कुछ देव लोग होते हैं। लेकिन ये असुर भी सिखा रहे कि क्या करना चाहिए, यज्ञ चालू कर दिया ना भृगुवंशी ब्राह्मण। और इधर अदिति रोने लगी, कश्यप जी तपस्या आए थे, प्रार्थना की मेरे बेटे इधर उधर हो गए हैं, प्रसंग बड़ा लंबा है हमको कहना नहीं है। लेकिन वामन देव जब अदिति की प्रार्थना पयोव्रत केशव तोषणम व्रत करके प्रकट हुए आज के शुभ दिन पर, अभिजीत मुहूर्त था, और मध्याह्न दोपहर के समय प्रकट हुए, और वामन देव जन्म लेते ऐसा नहीं कि बच्चा थे बढ़ने में टाइम लगा, वामन वपुल क्योंकि दिव्य कलेवर है, सचिदानंद जन्म कर्म चमे दिव्य में वही हो गए, और उसी समय उनका श्रृंगार किया गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया है, सरस्वती ने उपनयन संस्कार दिया है, अक्ष की माला रुद्राक्ष की माला दी, सावित्री ने उपनयन संस्कार, और वहां पर लिखा गया है कि अन्नपूर्णा ने सबसे पहली भिक्षा वामन देव को दी है। और गाम सन नयमन, पृथ्वी पर छोटे छोटे पैरों से वामन चल रहे है, बलि छलने को चले है त्रिलोकी। और जैसे ही भृगुकृच्छ क्षेत्र में स्वाहा हाहा हो रहा था, वहां पर जब वामन देव आए तो सारे ऋत्विज ब्राह्मणों का तेज घट गया, करोड़ों सूर्य के समान तेज आ रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे कि सनत कुमार आ गए कि क्या साक्षात कपिल आ गया, क्या है इतना तेज। और बलि महाराज विंध्यावली के साथ खड़े हो गए यज्ञ से, और स्वागतम नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण कुलम में आज मेरा कुल धन्य हो गया कि आपके चरण पधारे। और बलि महाराज ने विंध्यावली ने वामन देव के चरणों को धोया है, जिस चरणों के जल को शिवजी सर पर चढ़ाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं आज बाली धन्य हो गया। और फिर निवेदन करता है किम करवाम, क्या सेवा करूं, तब इसने कहा तीन पैर। और जैसे ही तीन पैर हां बोली, शुक्राचार्य ने मना किया मत दो, बोले विष्णु है, तब बलि कहते हैं कि विष्णु है और लेने आया है तो नहीं देने पर भी ले ही लेगा, अच्छा है कि सम्मान के साथ दे दूं। भगवान ने सोच लिया कि इसका पर्दाफाश करना है तो कभी भी क निकाल सकता है, रोडपति हो सकता है करोड़ में से, कर ही लिया। लेकिन बलि ने दिया, बोले मैं प्रहलाद के कुल का हूं, झूठा नहीं बनूंगा, झूठ बोल के पृथ्वी पर बाहर नहीं बनूंगा। शुक्राचार्य ने नीति कहा कि स्त्री के सामने झूठ बोल सकते हो, पांच जगह झूठ बोल सकते हो, जिसको झूठ बोलने की आदत वो पढ़ ले कि कहां कहां उसको मौका मिलेगा, हम ये नहीं सुनाना चाहते। कई लोग बोलते झूठ कहां कहां बोल सकते, बताओ बताओ क्यों, यही सीखना है क्या? लेकिन बलि महाराज नहीं बोले, ये ध्यान रखना। और फिर जैसे ही पानी दिया, भगवान वामन ने अपना विक्रम बढ़ाया, बोले वामन देव की विदाय गौर प्रेमानंदे। तो प्रसाद का टाइम हो गया, वामन देव का जन्म हो गया, और आप सबकी भक्ति बढ़े, वामन देव के चरणों में भिक्षा मांगते हैं कि हमें जैसे बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया, ऐसे हमारा तन मन भी आपके चरणों में हो। और जीव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते कि हे प्रभु, राधा कृष्ण के चरणों की प्रेमा भक्ति की पात्रता हम दासों पर भी अनुग्रह करके दीजिए, ताकि हम प्रभुपाद के इस मिशन में सेवा कर सके। श्रील प्रभुपाद की विदाई गौर प्रेमानंदे।